चार राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ। अविस्मरणीय स्मृतियों की गठरी लेकर हम हस्तिनापुर की ओर लौटे। मेरे मन में श्रीकृष्ण से संबंधित विचारों का कोलाहल मचा हुआ था। रथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ रहा था। सत्यसेन को हटाकर घोड़ों के बलगाय मैंने अपने हाथ में ले ली। कशाघात करते ही अयाल बिखराते हुए वे दौड़ने लगे। मेरा मन भी एकदम अस्त व्यस्त हो गया था। पांचालों के राज्य में स्वयंवर के दिन मैं स्वयं श्रीकृष्ण से मिलने गया था। मुस्कुराकर मेरा स्वागत करते हुए उन्होंने मुझसे अनेक विषयों पर चर्चा की थी। जिस समय मेरी बातों में प्रसंगवश दुर्योधन का उल्लेख हुआ, उस समय बीच में मुझको रोककर उन्होंने विषय परिवर्तन करने वाला एक विचित्र प्रश्न किया था। उन्होंने पूछा था, कर्ण, अरण्य में स्वच्छंद विचरण करने वाले शक्तिशाली वनराज को यदि भीड़ों के झुंड में लाकर खड़ा कर दिया जाए तो उसकी दशा क्या होगी? और क्या होगी, वह क्षण भर में ही भीड़ों का सफाया कर देगा, मैंने उत्तर दिया। लेकिन सदैव ऐसा ही होता हो, यही बात नहीं है। कभी कभी उनका भक्षण करना तो दूर, वह अपना ही अस्तित्व भूल कर उन भेड़ों की तरह याचन करने लगता है। यह कभी संभव नहीं, फिर वह वनराज ही कैसा? मैंने उनका विरोध किया। उन्होंने हंसते हुए कहा, छोड़ो इन बातों को, तुम आज स्वयं में भाग न लो, यही इच्छा है। कम से कम जब तक मैं अपने दाएं पैर का अंगूठा स्वीकृति के लिए ऊपर न उठाऊं, तब तक तो लेना ही मत। तदनुसार मैंने अपनी उनकी स्वीकृति प्राप्त होने तक संयम रखा था, परंतु मैं उस स्वयंवर में भाग ले नहीं सका। मुझको स्वीकृति देकर कोई भूल की थी क्या? यह प्रश्न पूछने के लिए ही मैंने धनुष से वह सूची बाण उनके अंगूठे पर छोड़ा था, परंतु उस बाण के घाव का निशान भी मुझको उनके अंगूठे पर यज्ञ के समय दिखाई नहीं दिया। इतनी अल्पावधि में वचन ने उनके अंगूठे पर से कैसे अदृश्य हो गया होगा? उनसे संबंधित सभी स्मृतियां एक रहस्य मिले हुए लिए हुए थी। एक ऐसी रहस्यमयता थी जो भ्रांति के समुद्र में डुबो देती थी। यज्ञ के समय उनका सारा व्यवहार एक ऐसा रहस्य था जो प्रत्येक को चिंतन मनन करने के लिए विवश कर देता था। कहां तो वो क्षण भर में ही छत के बराबर विशाल हो गए, और कहां दूसरे ही क्षण अपने बुआ के पुत्र की यह लीला समाप्त कर पुनः आसन पर शरीर सिकोड़ कर बैठ गए। सभी कुछ आश्चर्यजनक था। जैसे रथचक्र धूरी के चारों ओर ही चक्कर काटता रहता है, वैसे ही मेरा मन श्रीकृष्ण के आसपास ही चक्कर काटने लगा, और घूमता हुआ वह इस निर्णय पर आकर रुका कि श्रीकृष्ण अलौकिक हैं। रथ में पास ही बैठे दुर्योधन ने मुझसे पूछा, श्रीकृष्ण के संबंध में तुम्हारे क्या विचार हैं? कर्ण, तुम पराक्रमी वीर होकर भी उस काले जादूगर के जाल में फंस गए हो क्या? उसकी मोटी भावें चंचल हो उठी। जादूगर, मैंने जोर से कहा, मानो मुझ पर बिजली गिर पड़ी हो। जादूगर नहीं तो और क्या? शरीर बदलना, भिन्न भिन्न वाद्यों के कर्कश ध्वनियां निकालना, इन सब बातों को जादूगर नहीं तो और कौन कर सकता है? उसने कुछ ऐसे भाव से सहज ही कहा मानो कुछ हुआ ही न हो। मैं उसके अनपेक्षित उत्तर से और अधिक संभ्रम में पड़ गया। ऐसा लगने लगा कि कहीं संभ्रम ही तो मेरा जीवन नहीं है। विचारों की सुइयां जैसे मस्तिष्क के टांके उधेड़ रही थी, सिर फटा जा रहा था। असहाय होकर मैंने अपनी बाईं हथेली मस्तक को दबाने के लिए ऊपर उठाई। उस हथेली से मुकुट का स्पर्श होते ही मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मेरा मुकुट तो दुर्योधन के सिर पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। जल्दी जल्दी मैंने सिर से मुकुट उतार कर देखा। उसकी बनावट छत से लगे हुए श्रीकृष्ण के मुकुट जैसी थी। वह मेरे सिर पर कैसे, यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं घोड़ों के पीठ पर तड़ातड़ कशाघात करने लगा। वायुवेग से वे हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर से मैं श्रीकृष्ण के प्रति आकर्षित होकर गया था। आते समय उनके संबंध में कभी समाप्त न होने वाले प्रश्नों की गठरी लेकर लौटा। उनमें से एक प्रश्न यह था कि श्रीकृष्ण के चक्र ने मुझको क्यों नहीं जलाया? क्या केवल अवैध कवच के कारण? दूसरा प्रश्न यह था कि उनकी आज्ञानुसार एक आज्ञाकारी सेवक की भांति मैं यज्ञवेदी के पास कैसे चला गया? और तीसरा यह कि श्रीकृष्ण का मुकुट मेरे मस्तक पर किसने कब और किस लिए रखा? 5. राजसूय यज्ञ के लिए सभी राज्य जीतने की शर्त पांडवों ने किस प्रकार पूर्ण की थी, इसका सरस वर्णन पांडवों के आर्य अमात ने हमें इंद्रप्रस्थ में सुना ही दिया था। इन सभी राज्यों की नामावली मेरे कानों में गुज रही थी। उन्होंने एक एक दिशा चुनकर उस मार्ग में पड़ने वाले सभी राज्यों को जीत लिया था। पराजितों से सुवर्ण, रूप्य, चांदी, हीरे, माणिक्य, प्रमाल, रत्न, मोती, वैदुर्य, पुष्करराजन, नीलबड़ी, गाय और दास, ये सब कार के रूप में गाड़ियों में लादकर अपने भंडार में भर लिए थे। किसी भी राज्य का सर्वश्रेष्ठ साधन है संपत्ति। संपत्ति के बिना राज्य चल नहीं सकता, चल भी गया तो टिक नहीं सकता। इसीलिए इंद्रप्रस्थ में ही मेरे मन में यह प्रबल इच्छा उठी थी कि मुझे भी दिग्विजय करनी चाहिए। पांडवों ने एक एक दिशा ग्रहण कर दिग्विजय की थी। मैं अकेला ही 8 दिशाओं में दिग्विजय करूंगा, मन ही मन वही मैंने यह निश्चय कर लिया। ऐसी दिग्विजय में कितने शत्रुओं को पदाक्रांत करना पड़ता है, उनकी सामर्थ्य कितनी होती है, किस ऋतु में यह दिग्विजय सफल होगी, इन सब बातों पर मैंने अकेले अच्छी तरह विचार कर लिया था। अर्थात दिग्विजय का प्रारंभ मैं पूर्व दिशा से ही करने वाला था। हस्तिनापुर राज्य की पूर्वी दिशा में सबसे अधिक बलवान दो राज्य थे, एक द्रुपदों का पांचाल और दूसरा जरासंध का मगध। इनके अतिरिक्त कौशल, अयोध्या, काशी, विदेह, वत्स, कुंतल, मुंड्र, उत्कल, ओड्र, अंग और बंग इत्यादि राज थे। दक्षिण दिशा में सबसे अधिक सामर्थ्यशाली राज्य श्रीकृष्ण के यादवों का मथुरा था। इसी राज्य को शूरसेन राज्य भी कहते थे। इसके अतिरिक्त दक्षिण में शाल्व, चेरी, करुष, दर्शाण, अवंती, निषाद, मेकल, दक्षिण कौशल, वैणिक, विदर्भ, महारथ, अनार्थ और मालव मत्स्य आदि राज थे। अनार्थ राज्य के समीप श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया नया राज्य द्वारका था, पश्चिम सागर के तट पर स्थित। पश्चिम सागर दिशा में अवश्य दो बलशाली राज्य थे, एक रितायन पुत्र शल्य का मद्र और दूसरा वहली। इनके अतिरिक्त वातधान, सौरिव, सिंध, पंचनद, अम्मष्ट, त्रिगर्त, कैकेयी, शिबि, कम्बोज और गांधार राज्य थे। दिग्विजय की दृष्टि से पश्चिम दिशा अत्यंत प्रबल विरोधी दिशा थी। उत्तर दिशा में कुलिंद, राक्षस, तंगड़, खस और किरात राज थे। कितने भी वायु गति से कौन आक्रमण किया जाए, फिर भी इतना विशाल प्रदेश जीतने के लिए उपयुक्त सेना लेकर जाने में कम से कम 6 मास की कालावधि तो मुझको लगेगी। हाँ, एक बात का पालन मुझको बड़ी कठोरता से करना था। मेरी शक्ति कितने ही बढ़ क्यों न जाए, फिर भी मैं मथुरा पर या द्वारका पर कभी आक्रमण नहीं करूंगा। इसका चाहे संसार जो अर्थ लगाए, मुझे उसकी तनिक भी चिंता नहीं थी। 6. हम लोग हस्तिनापुर आए तुरंत, परंतु दुर्योधन की मनस्थिति बड़ी विकट हो गई। रात को शयनगृह में वह सोते सोते उठा और पलंग के पास पड़ी गदा को अपने कंधे पर रखकर, मैं इंद्रप्रस्थ में पल भर भी नहीं रुकूंगा, बड़बड़ाते हुए महल के बाहर भागने का प्रयत्न करता। रानी भानुवती उसके तप्त मस्तक पर शीतल जल छिड़क उसके कंधे जोर से हिलाकर उसको यह विश्वास दिलाती कि वह हस्तिनापुर में ही है। भान होते ही पीठ पीछे दोनों हाथों के अंगुलियों को आपस में मिलाकर वह महल में घूमने लगता, जैसे कोई सिंह गुफा में चक्कर काट रहा हो। कभी कभी आधी रात को भी प्रभंजन को भेजकर वह मुझे बुलाता। मेरे सम्मुख पहुंचते ही उसके दोनों हाथों की उंगलियां और अधिक कस जाती, अनेक प्रश्न पूछकर वो मुझको पहचान कर देता। कारण पांडवों के यज्ञ से पशुओं की गिनती करने के पश्चात भी मैं जीवित हूँ, इसी पर आश्चर्य होता है। क्षण प्रतिक्षण मरण तुल्य यातना देने वाली इन कटु घटनाओं को हृदय में सोचे रहने की अपेक्षा विष प्राशन कर मैं उनका अंत ही क्यों न कर दूं। मेरे पूजनीय पिता के अंधत्व पर मर भेदी व्यंग्य किया और वह भी एक तुच्छ स्त्री ने। आह, तदक्त शब्दांगार फेंकने वाले उसकी जीव क्यों न काट दूं, उसके वे विषदंत क्यों न तोड़ दूं, और यदि तोड़ना संभव न हो तो कुरु के रूप में जीवित ही क्यों न हूं, किस लिए, कहो कर्ण, किस लिए। मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको शांत करने का प्रयत्न करता, वह कुछ शांत हो जाता। परंतु जैसे ऊपर से शांत दिखाई देने वाला सागर का अंतरंग गहरा होता है, वैसे ही उसके अंतकरण में हलचल सी हो रही थी। उसका कुछ भी पता नहीं चलता था। एक बार अचानक मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर वह मुझसे शयन गृह से बाहर चलने का आग्रह करने लगा। उसके मन को दुख न हो इसलिए आधी रात के समय भी मैं उसके साथ गया। वह मुझको कुरुओं की राजसभा में सीधे राज सिंहासन तक ले आया। उस राज सिंहासन के समीप मैं आज तक कभी नहीं गया था। मशाल के मंद मंद प्रकाश में चमकने वाले उस सिंहासन के पीछे बनी सूर्य वंश की प्रतीक सुवर्ण की सूर्य प्रतिमा की ओर उंगली से संकेत कर वह बोला, यदि कर्ण तुम मेरे समर्थ सहचर हो तो सूर्य वंश के मानचिन्ह पर सूर्य प्रतिमा की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करोगे तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। कर्ण, मैं अपने आप नितांत एकाकी अनुभव करने लगा हूँ। आज तक ऐसी प्रतिज्ञा की आवश्यकता तुम्हें कभी हुई है क्या? आज हो रही है। मैं उपदेश और तत्वज्ञान नहीं चाहता, तुम्हारी अखंड मित्रता का पवित्र वचन चाहता हूँ मैं। यदि इसी में तुमको संतोष हो सकता हो तो यह वचन मैं तुमको देता हूँ। मैंने उसकी बड़ी हुई हथेली पर हथेली रख दी। समीप ही पाषाण के स्तंभ पर लगे हुए मशाल से इंगुदी के तेल की एक चिंगारी टूटी और मेरी हथेली पर गिर पड़ी, लेकिन कवच के कारण मेरा हाथ जला नहीं। 7. जब भी मुझको अवसर मिलता मैं दुर्योधन के घटित अप्रिय घटनाओं को भूल जाने को कहता। विस्मरण मन की एक दुर्लभ शक्ति है, लेकिन यह शक्ति सबको सहज साध्य नहीं होती। मैं उससे भूतकालीन घटनाएं भूल जाने को कहता था, परंतु मैं स्वयं भी उसको भूल नहीं पाया था। मेरा प्रयत्न ऐसा ही था जैसे कोई घायल व्यक्ति अपने दुखदायी घाव को संभालता हुआ दूसरे घायल व्यक्ति के घाव को फूंके, पर ऐसा करने के लिए मैं विवश था। कभी कभी ऐसा करने के अतिरिक्त और कुछ संभव ही नहीं होता। एक साथी की पुत्रवधू बनना मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। उस रूप गर्विता के ये विषैले बागबाण निरंतर मेरे मन में असह्य दाह उत्पन्न करते रहते थे। मैं संसार में रम गया था। 7 पुत्रों का पिता और 2 सुंदर स्त्रियों का भर्ता होकर भी द्रौपदी की स्मृति मुझको सतत ऐसी चुभती रहती थी जैसे हृदय में बाण लगा हुआ मृग चिल्लाता रहता है। स्मृतियां, स्मृति को सुगंध का पात्र या मयूर पंख कहकर पुकारने वाले क्या जाने कि स्त्री द्वारा अपमानित होने वाले पुरुष योद्धा की स्मृति संतप्त मरुभूमि जैसी होती है। उस भूमि से केवल प्रतिशोध की दाहक ज्वालाएं हैं लपलपाती हुई नित्य बाहर आकर निकला करती हैं। उन ज्वालाओं में संयम, उदारता और क्षमाशीलता के कोमल अंकुर भस्म हो चुके होते हैं। काल के गर्भ में 25 वर्ष उदस्त हो गए। कहते हैं कि काल मन पर होने वाले आघातों को सौम्य बनाने वाली दिव्य औषधि, लेकिन मेरे अनुभव तो कभी यह बात आई ही नहीं। इन 25 वर्षों में निरंतर एक ही विचार मेरे मन में कसकस आता रहा, वह यह कि मैं क्षत्रिय होता तो सचमुच, यदि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया होता तो मेरा जीवन कैसा होता? राजा दुर्योधन जैसा, शकुनी मामा जैसा या शिशुपाल जैसा, ये सभी क्या क्षत्रिय नहीं थे? इनके जैसा जीवन यदि मुझको मिल जाता तो क्या वह मुझको अच्छा लगता? यह प्रश्न तथा ऐसे ही अनेक प्रश्न मुझको घेरे रहते थे, लेकिन उनमें से एक का भी संतोषजनक और युक्तियुक्त उत्तर मेरे पास नहीं था। मय और दुर्योधन, इन दोनों का जीवन दिन प्रतिदिन अधिकाधिक उलझता जा रहा था। कौन किसको आधार दे, यही मुख्य प्रश्न था। कुछ भी हो, दुर्योधन को संभालना मेरा कर्तव्य था। उसको प्रसन्न रखने के लिए मृगया, जलविहार, रथ दौड़, द्युत आदि मार्गों का अवलंब अनिवार्य था। मुझको तो स्वयं द्युत से असीम घृणा थी, लेकिन शकुनी मामा इससे बड़े प्रवीण थे। वे दोनों मामा भांजे घंटों बैठे बैठे द्युत खेलते रहते। वे ध्रुव पासों का वनीरस खेल न मेरी समझ में आता और न उसमें मेरा मन ही रमता था। दुर्योधन के आग्रह के कारण उसके पार्श्व में बैठकर उबाने वाले उस खेल को मैं नीरस भाव से देखता रहता। द्युत के पास उस पट की ओर देखकर मुझको निरंतर यह लगने लगा कि मेरा सारा जीवन ही उस पट की तरह ही था, बड़ी और आड़ी केवल चार पट्टियां। उन पट्टियों पर वंचनाओं के, अपमान के और अवहेलना के असंख्य चौकोने। एक बार मैंने देखा कि खेलते खेलते दुर्योधन के सभी गोटे मारे जा चुके हैं। उस दिन एक भी पासा उसके मन के अनुरूप नहीं पड़ रहा था। सभी पासे मामा के अनुकूल रहे, इसीलिए स्वयं पर क्रुद्ध होकर दुर्योधन ने खेल का पाठ उठाकर फेंक दिया। उसकी ओर देखकर हंसते हुए मामा बोले, पगले, इस पट को इस तरह मत फेंक। इच्छा होने पर इसी पट से तू पांडवों को धूल में मिटा सकेगा। यह कैसे हो सकता है? पर्वत जैसे उस भीम को यह दो हाथों का वस्त्र और ये चार क्षुद्र कौड़ियां कैसे धूल में मिला देंगी? अपने तीक्ष्ण आंखें सिकोड़ कर काली दाढ़ी के घनों बालों पर बाएं हाथ की कृष्ण अंगुलियां फेरते हुए क्षण भर रुककर मामा बोले, पर्वताकार गजराज को एक छोटा सा अंकुश कैसे सीधी राह पर ले जाता है, वैसे ही ये पांच कौड़ियां पांचों पांडवों को ठीक रास्ते पर लगा देंगी। मामा, आज तक मैं आपको बड़ा बुद्धिमान समझता आया हूँ, परंतु आज मुझको आपकी बुद्धि पर सचमुच ही संदेह होने लगा है। उनकी कल्पना का अर्थ न समझने के कारण दुर्योधन उनसे बोला, भ्रांत व्यक्ति को आसपास का जगत भी भ्रांत ही दिखाई देता है। तुम्हारी भी यही दशा है, तू विमूढ़ हो गया है। द्रौपदी द्वारा किए गए अपमान से विगत अनेक रातों से तू सो नहीं सका, इसीलिए तू ऐसी बात कर रहा है। उनका प्रत्येक शब्द हृदय भेदक था। मामा, मैंने अनुचित क्या कहा? चार पट्टी वाले द्युत के इस पट में तुम अखंड पर्वत जैसे पांच पांडवों को लपेटने का अचिंत्य स्वप्न देख रहे हो, यह कैसे संभव है? चार पट्टियों वाले इस पट में केवल पांच पांडव ही नहीं, बल्कि प्राणप्रिय पांचाली और राजमाता कुंती को भी लपेट कर दिखा सकता हूँ मैं। जो साहसपूर्ण स्वप्न देखने के अभ्यस्त होते हैं और जो अपना प्रत्येक स्वप्न साकार करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वही सच्चे वीर है। लेकिन यह सब संभव कैसे हो सकता है? स्वप्न और सत्य में आकाश और पाताल का महान अंतर होता है, और किसी वीर के प्रति स्वप्न साकार हो जाते हो, ऐसी बात भी नहीं। तुम राजा अवश्य हो, लेकिन भक्ति का परीक्षण करने की दृष्टि राजा के पास होनी चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं। नहीं तो तुम निश्चय ही यह स्वीकार कर लेते कि व्यसन बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी अधःपतन की गहरी खाई में पहुंचा सकता है। व्यसन? किसको व्यसन और किस वस्तु का? युवराज दृष्टि को द्युत खेलने का। तो फिर उससे हमें क्या? एक बार, केवल एक बार ही अपने उस युधिष्ठिर को इस शकुनी मामा के सामने द्युत खेलने के लिए लिवाला। तू अब संतप्त हो उठा है और अपने मन का संतुलन नष्ट होने से तूने पट उठाकर फेंक दिया है। इससे भी अधिक मात्रा में मैं युधिष्ठिर के मन का संतुलन बिगाड़ कर दिखा दूंगा। मामा, कैसी नासमझी से बातें करते हैं। वह इतना मूर्ख नहीं है कि फिर इस हस्तिनापुर में आए। वह अपने आप कभी नहीं आएगा। इसको लाने के लिए ही तो तेरा सारा कौशल। बिल में रहने वाले भुजंग सरलता से बाहर नहीं आते, इसके लिए बिल में धुनी डालनी पड़ती है। उसको यहाँ लाने के लिए आप काहे की धुनी फूकेंगे? यज्ञ की। अन्य किसी कारण के लिए वह यहाँ भले ही ना आए, लेकिन धार्मिक कार्य के लिए आए बिना नहीं रहेगा। उसका उपनाम धर्म है, तुम यह भूल गए हो क्या? यज्ञ, माथा से कुटते हुए दुर्योधन बोला। हाँ, यज्ञ, राजसूय यज्ञ से भी अधिक भव्य यज्ञ। आमात विश्वकर्मा को बुलवाकर आज ही सबको निमंत्रण भिजवा दो। हाथों में कौड़ियां खनखनाते हुए मामा बोले। उनके हाथों की कौड़ियां मुझको मृत व्यक्ति के निष्प्राण आंखों की पुतलियों जैसी भयानक लगी। उनके किसी भी विचार में कहीं भी पुरुषार्थ दिखाई नहीं दे रहा था। उनका वार्तालाप मैंने बड़े ध्यान से सुना था, परंतु मामा के विचारों में राजनीति नाम के नीचे कपट की दुर्गंध आते ही तीव्र विरोध करता हुआ मैं बोला, मामा, आप सुवल राज कहते हैं। इस हाथ में खड्ग लेकर सम्रांगण में शत्रु को धूल चटाई जाती है, उसी हाथ में इन कौड़ियों को लेकर आप भाग्य का पाशा पांडवों के गले में डालना चाहते हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। कर्ण, राजनीति तुम्हारा विषय ही नहीं है। राजनीति केवल भुजाओं के बल पर या सज्जनता पर कभी नहीं चला करती, वह बुद्धि के व्यायाम पर चला करती है। घोर अरण्य को नष्ट करने के लिए तुम जैसा भोला भाला वीर हाथ में परशु लेकर पागल की तरह अकेला ही जीवन भर उसको काटता रहेगा, परंतु मुझ जैसा व्यक्ति एक चिंगारी से ही उसको ठिकाने लगा देगा। चल, आठ दिशाओं के नाम से आठ का दाव लगा। यह कहकर उन्होंने कौड़ियां हाथ में फिराकर पट के पास फेंक दी। ठीक आठ का दाव पड़ते ही झट से आसन से कूदकर वे चिल्लाए, वह देखो, आठ अर्थात आठ ही। उनके कर्कश तीव्र स्वर से मेरा मस्तक सुन्न हो गया। मामा पराक्रमी क्षत्रिय हैं या द्युत अड्डे के चतुर जुआरी, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उनके सामने के निकट से उठकर बाहर आया। अपने जीवन में मैं अनेक प्रकार के लोग देखे थे, परंतु मामा उनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आते थे। विचार करते करते मैं विशाली के महल में आ गया। भीतर प्रवेश करते ही वृषसेन और सुषेण मेरे पैरों से लिपट गए। छोटा वृषकेतु रेंगता रेंगता तोतले शब्दों में ता कहता हुआ मेरी ओर डगमगाता हुआ आने लगा। उन तीनों को देखते ही मामा और उनकी राजनीति न जाने कहाँ लुप्त हो गई। 8 अंगराज, कृष्ण चतुर्दशी का दिन यज्ञ के लिए निश्चित हो गया है। मेरे महल में कभी न आने वाले आर्यमात स्वयं आकर मुझे यज्ञ दिवस की सूचना दे रहे थे, इस पर मुझको आश्चर्य। कृष्ण चतुर्दशी? तो क्या दुर्योधन अमावस्या सिर पर बैठा कर यज्ञ करेगा? हाँ, मामा ने चुना है यह, किसी भी कारण से इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। मामा ने? फिर तो यज्ञवेत्ता कौन है? मामा ही। यज्ञ वाले दिन संपन्न होने वाली सभी विधियों को श्रद्धा का आधार रहे, इसीलिए महाराज ने आपसे यह प्रार्थना की है कि आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा में खड़े होकर अर्घ्यार्थ पूर्ण पूर्वक सूर्य आराधना करें। यह करने के लिए ही मैं स्वयं आपसे मिलने आया हूँ। मैं जाने के लिए उठे, इतने में ही उनको ढूंढता हुआ एक सेवक अतलसी वस्त्र से आच्छादित एक बड़ा सुवर्ण थाल हाथ में लिए भीतर आया। अभिवादन करके उसने उस थाल को हमारे सामने ही शीशम की तिपाई पर रख दिया। यह क्या है? अमात ने भवें ऊंची करते हुए उससे पूछा। इंद्रप्रस्थ से एक दूत यह थाल लेकर आया है, वह बाहर अतिथिगृह में ठहरा हुआ है। थाल के पास आकर अमात ने उस पर पड़ा हुआ अतलसी आच्छादन दूर किया। थाल में एक स्वर्ण मुकुट और एक स्वर्ण से मढ़ी हुई गदा थी। ये दोनों वस्तुएं दुर्योधन की थी। उनको देखते ही मेरी स्मृतियों की बांबी फूट पड़ी। घटनाओं की काली और लाल चीटियां विचरण करने लगी। सरोवर में डुबकियां खाने वाला दुर्योधन, पराक्रमों की छलना में अल्पना, तो अंधे पिता के पुत्र भी अंधे ही होते हैं, आदि घटनाओं के खंड खंड चित्र क्षण भर में मेरी आंखों के सामने नाचने लगे। आमात्य, दुर्योधन के वस्त्रागार में जो सबसे बड़े उत्तरीय और अधरीय रखे हों उनको ढूंढवाकर साल में वापस इंद्रप्रस्थ भिजवा दीजिए। मैंने आमात्य को उचित आदेश दिया। भीम के वस्त्र उसी थाल में नहीं लौटाए जाएंगे तो फिर किस थाल में जाएंगे? सेवक ने थाल उठाया, आमात्य के पीछे पीछे वह चला गया। थाल में रखे उस मुकुट के कारण मेरे मन का चित्तर पक्षी अपनी ही चोंच से घटनाओं के विविध रंगों को पंख नोचने लगा। जिस दिन शिशुपाल का हृदय विदारक अंत हुआ था, उस दिन मैं अपना मुकुट दुर्योधन के सिर पर रखा था, परंतु आते समय मेरे मस्तक पर भी मुकुट था। वह किसने रखा, कब रखा और उसकी बनावट ठीक श्रीकृष्ण के मुकुट जैसी ही कैसी थी? इन प्रश्नों के युक्तियुक्त उत्तर मुझको कभी ही नहीं मिले थे। भूषणागार में जाकर संभाल कर रखा हुआ वह मुकुट मैंने हाथ में उठा लिया। उस पर जमे हुए धूल कण अपने देह पर पड़े उतरी से धीरे धीरे साफ किया। उस नक्काशीदार शिरोभूषण पर से हाथ फिराते समय एक अपरिचित संवेदना की लहर मेरे सारे शरीर में दौड़ गई। मेरी मति शून्य कर देने वाले इस मुकुट का रहस्य क्या था? मन के भूषणी पर पुनः पुनः प्रश्नों के पत्थर चढ़ाकर देखे, लेकिन एक भी सफल नहीं हुआ। वैसे देखा जाए तो सारा जीवन ही रहस्य से भरा होता है। अपने आसपास क्या कम रहस्य होते हैं, लेकिन उनमें एक आध ही रहस्य मन को छू लेने वाला होता है। वह मन को बेचैन कर देता है। मन उसका पता लगाने के लिए निरंतर उस रहस्य के पीछे ही दौड़ता रहता है। धीरे से वह मुकुट मैंने भूषणागार में आसन पर रख दिया। उत्सुकतावश शैवाल जैसी होती है, केवल एक ही घटना के पत्थर के चारों ओर वह मन के जलाशय में संचित होती रहती है। उसको संचित न होने देने का एक ही उपाय होता है। इसके लिए आवश्यक है कि उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया जाए। यही निश्चय कर मैंने मुकुट की आकृति आंखों के सामने से हटा दी, भूषणागार का द्वार बंद कर दिया। 9 दुर्योधन यज्ञ की तैयारी करने लगा। हस्तिनापुर के सेवक निकट के राज्यों में जाकर यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री हस्तगत करने लगे, लेकिन दुर्योधन ने दुशासन को मगधों के राज्य में किस लिए भेजा था यह बात कोई भी नहीं जान सका। राजभवन में होने वाली ऐसी गुप्त बातों का मुझको भी पता नहीं चलता था। 15 दिन के भीतर ही मगधों के राजनगरी राजगिरी से दुशासन लौट आया। जैसे वह मुझे मिला, मैंने उससे यह पूछा कि मगध किस लिए गया था, लेकिन उसने संक्षिप्त में उत्तर दिया था यज्ञ की तैयारी के लिए, और बड़ी चतुराई से वास्तविक बात टाल दी। दुर्योधन के यज्ञ के विचार से मुझको वास्तव में आनंद होना चाहिए था, लेकिन वह हो नहीं रहा था। इस यज्ञ में वह अपनी संपत्ति का नेत्र दीपक प्रदर्शन करने वाला था। संपत्ति जीवन का अत्यावश्यक अंग हो सकती है, परंतु मेरे विचार से उसका प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। मामा उस प्रदर्शन में द्युत खेलेंगे, यह विचार तो कदापि सह्य नहीं था। मामा के प्रत्येक विचार का दुर्योधन शिकार होता जा रहा था। यह देखकर मेरे मन की स्थिति बड़ी कठिन होने लगी। मित्र के रूप में अखंड साथ देने का वचन मैंने उसको दिया था। वैभव काल में स्तुति करके संकट के समय मौन धारण कर लेने वाले लोग मित्र नहीं होते। मैं दुर्योधन का प्राण प्रिय मित्र था। मामा के विचारों में जो कटुता थी उसको उसी समय दिखा देना क्या मेरा कर्तव्य नहीं था? क्योंकि पांडवों को राज्य के रूप में गणगौर खांडवन देने का विचार भी मामा का ही था। यज्ञ का भुजंग भी अब उन्होंने ही दुर्योधन के मस्तिष्क में घुसाया है। भाव विवश दुर्योधन को समय पर सावधान करने के लिए मैं एक दिन उसके भवन गया। मैंने सोचा था कि वह वहां अकेला होगा, लेकिन युवराज की दुशला के कारण मेरी धारणा मिथ्या हो गई। मुझको देखते ही वह उठकर खड़ी हो गई। छिपे कटाक्ष से वह शायद मेरे कानों की ओर देख रही थी। उसका इस तरह मुझे देखना सहन नहीं हुआ। वास्तव में अपने कुंडलों से अब मैं बुरी तरह ऊब गया था। 40 वर्षों से वे मेरे कानों से चिपके हुए थे, लेकिन किस लिए यही नहीं जान पाया था मैं। हाँ, औरों का यहाँ से ध्यान व्यर्थ ही मेरी ओर खींच लेते थे। मेरा चेहरा दुशाला को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, यह सोचकर एक विशाल स्तंभ की ओर से मैं एक आसन पर बैठ गया। चतुर दुर्योधन ने मेरी कठिनाई तुरंत पहचान ली। दुशाला को तुरंत ही भेज दो, यह कहकर उसने दुशासन को तुरंत भेज दो, यह कहकर उसने दोशाला को वहां से हटा दिया। सिर उठाकर जैसे ही वह बाहर गई, मैंने सीधे मुख्य विषय की चर्चा छेड़ दी। राजन, तुम्हारा पराक्रम पर दृढ़ विश्वास है न? कर्ण, पराक्रम ही तो छत्री का जीवन होता है। मैं तो छत्री ही हूँ, लेकिन इस प्रश्न का प्रयोजन? तो फिर किसी भी विचार को साकार करने के लिए तुम पराक्रम का मार्ग क्यों नहीं स्वीकार करते? सभी विचार पराक्रम से सफल नहीं होते हैं इसीलिए, और राजनीति भी तो उस महान पराक्रम एक प्रकार का पराक्रम ही है। मेरे प्रश्न का भाव समझकर उसने उत्तर दिया, राजनीति या कैसा पराक्रम? बुद्धि का अपने हाथ में लगी कौड़ियों की खुड़खुड़ आवाज करता हुआ वह बोला, यह पराक्रम हम लोगों के लिए शोभनीय है, क्या यह मानते हो तुम? क्यों न मानो, पराक्रम जरासंध को श्री कृष्ण ने केवल भुजाओं के बल पर मारा है, क्या तुम यह समझते हो? राजनीतिक सूची बाण नहीं है, राजनीति सूची बाण नहीं है जो नाक की सीर में ही चले, वह तो जिम्मे बाण है जो परिस्थिति के अनुसार टीढ़ी मेढ़ी चाल चलता हुआ जाता है। और जिस पराक्रम की तुम रट लगा रहे हो, उसका ध्यान पांडवों ने कब और कहाँ रखा था? क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया? बचपन में उन्होंने मेरे साथ और दुशासन आदि मेरे भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, वह किसी उपेक्षित दास से अच्छा था क्या? मेरी बात छोड़ो, लेकिन तुम अपना ही गौरवमान कैसे भूल गए? अखाड़े में खड़े भीम का निष्ठुर कशाघात तुम्हारी पीठ पर अब भी क्या नहीं हो रहा है? द्रौपदी विषैले शब्दों से क्या तुम भूल गए हो? शरीर में शक्ति होने पर भी तुम अपने हृदय शून्य व्यवहार का प्रतिशोध क्यों नहीं ले सके? बताओ, यदि पराक्रम जीवन का आधार है तो फिर तुम चुप क्यों बैठे हो? स्वयं मंडप जैसे मंगल स्थान पर जिसने क्रूरता से तुम्हारे पुत्र का वध किया, कम से कम उसका प्रतिशोध तो, प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध, तुम्हारे मन में यह कैसी भावना बन गई है मेरी समझ में नहीं आता। प्रतिशोध कभी किसी मनुष्य के मन की मूल भावना नहीं होती, अपमानित मन की वह केवल प्रतिक्रिया होती है। किसी की स्वाभाविक स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, स्वाभिमान को ठेस लगने पर प्रतिशोध किया आघात से कभी व्याकुल नहीं होना चाहिए। विगत 25 वर्षों से मेरा मन ऐसा क्यों हो गया है, इसकी किसी ने कभी क्या पूछताछ की है? सेवक और सैनिकों से परिपूर्ण विशाल वैभवशाली इस राजभवन में दुर्योधन उपेक्षित ही रहा है। जिनको मैं जीवन भर पूज्य मानता आया हूँ, उन पितामह ने भी यज्ञ पांडवों के यज्ञ के पशुओं की गिनती करने का आदेश देकर मुझे पशुओं से भी तुच्छ बना दिया। कहो राधेय, इन सब बातों को मैं कैसे भूल जाऊँ? भूल जाने का प्रयत्न करना चाहिए तुम्हें, सभी घटनाओं को ध्यान में रखकर यदि जीवित रहना चाहोगे तो पागल हो जाओगे। कर्ण, उपदेश देना सरल है, करके दिखाना बड़ा कठिन होता है। तुम ही अपने प्राण प्रिय कवच कुंडलों की शपथ लेकर कह सकते हो कि क्या सबने ठौर कुठौर सूत पुत्र कहकर तुम्हारा जो मर्म भेदी घोष किया था, उसको तुम पूर्ण रूप से अब भूल गए हो? भूलो, उसने मुझको निरुत्तर कर दिया। इन सब बातों से मेरे देह की गुफा में कहीं सोया हुआ पूरी स्मृतियों का वनराज हड़बड़ाकर जग गया। अकेले दुर्योधन का छोड़ सचमुच ही मुझे किसी ने कभी इतनी सस्नेह सहानुभूति नहीं दी थी। क्या सभी लोग हर अवसर का लाभ उठाते हुए तिरस्कार के वस्तिक बाण जीव के धनुष पर चढ़ाकर चारों ओर से मेरे ऊपर छोड़ते नहीं आए थे? मैं योद्धा हूँ, धनुर्धर हूँ, अंगराज हूँ, मेरे पास कवच कुंडल है, मेरा यह आत्माभिमान क्या झूठा नहीं था? सबके द्वारा ठुकराया गया और केवल दुर्योधन द्वारा अपनाया गया मैं सारथी से अधिक और क्या था? पर्णकुटी में पला होने के कारण कुशल राजनीति के दावों से मेरा परिचय नहीं था। कदाचित जो कुछ दुर्योधन कह रहा था वह ठीक ही था, उसको कोई उपदेश देने का अधिकार मुझे नहीं था। मुझ जैसा सुतपुत्र तो अपमान के कड़वे घूंट पचा सकता था, लेकिन दुर्योधन जैसे राजा के लिए यह असंभव था। सारथियों के मन घोड़े जैसे होते हैं, यही सत्य है, हर कोई उनकी पीठ पर कोड़ा फटकार सकता है। मैं चलता हूँ, कहता हुआ मैं उठ खड़ा पड़ा। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। क्रुद्ध हो गए हो क्या? बैठो, यह कहकर मेरा हाथ पकड़कर बलपूर्वक उसने फिर मुझे बैठा लिया। क्षण भर हाथ में लगी पासे कौड़ियों को देखता हुआ वह गंभीर स्वर में बोला, सब लोग मुझको अविचारी और कुरु कहते हैं, क्या तुम मुझको भी वैसा लगता है? बताओ। कदापि नहीं, तुम कुरुओं के कुल के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ युवराज हो। अपने हित अनहित की बातें तुम निश्चय ही जानते होंगे, लेकिन मेरे मित्र के रूप में मैं तुमसे इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि शकुनी मामा की किसी बात को स्वीकार करने से पहले उस पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। अपने हाथ की कौड़ियाँ मेरे हाथ में देता हुआ वह बोला, थोड़े ही दिनों में तुम यह देखो देख लोगे कि कौड़ियाँ तुमसे और मुझमें से न जाने कितनी अधिक पराक्रमी हैं। मामा, जैसे जिन लोगों को मैंने अभी राजसभा में रखा है, केवल अहिछत्रा की यात्रा नहीं की भीड़ नहीं है, इसका विश्वास तुमको तभी होगा। कुछ भी हो, यह द्वित की कल्पना मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। मैंने हाथ में लगी कौड़ियाँ सामने आसन पर फेंक दी। बहुत देर तक वे थरथराती रहीं, फिर हिलती जुलती स्थिर हो गई। एक बार मेरी ओर तथा एक बार कौड़ियों की ओर आंखें फाड़ कर देखते हुए दुर्योधन ने बड़ी सावधानी से उन्हें उठा लिया। उसकी कंजी आंखें रंग बदलने लगी। अपनी आंखें एक टक मुझ पर स्थिर करता हुआ वो बोला, तुम द्युत नहीं खेलते यह मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए केवल एक बार ही इन कौड़ियों को फेंको। मन में कोई संख्या सोचकर कहो और कौड़ियाँ फिर फेंको। उसने पुनः कौड़ियाँ मेरे हाथ में दे दी। मुझको उसके विचित्र लहरी और हठी स्वभाव का बड़ा तरस आया। मैं द्युत से घृणा करता हूँ, यह जानते हुए भी वह हठपूर्वक मुझको द्युत खिलवाना चाहता था। कौड़ियाँ हाथ में लेते ही मेरे मन में विचार आया कि दौड़ता हुआ जाऊँ और इनको गवाक्ष से सीधे नीचे फेंक दूँ। मेरे दोनों हाथ हिलाता हुआ वह बोला, चुप क्यों हो, अंग बोलो और पास से फेंको। तुम कितने भाग्यशाली हो यह एक पासा ही बता देगा। भाग्य भाग्य के पासे भी अगर भाग्य बताने होते तो मैं अकेला इस भाग्य के विरुद्ध ताल ठोक कर खड़ा हूँ, इसीलिए मैं एक अंक का दाव लगाता हूँ। एक चिल्लाते हुए मैंने कोड़ियाँ फेंक दी। वे बड़ी देर तक थरथराती रही और फिर स्थिर हो गई। दाव पड़ा, परंतु वह एक का नहीं था, पाँच का था। उस दाव को देखकर दुर्योधन को आनंद होना चाहिए था, परंतु वह हुआ नहीं। स्वयं को भूलकर वह एक टक उन कौड़ियों को देखने लगा, मानो हाड़ की बनी हुई कौड़ियों में वह किसी को ढूंढ रहा था। उसके संकुचित मस्तक पर कोली के जाल जैसा सिकुड़ने का घना जाल निर्मित हो गया। नाक के तीक्ष्ण अग्रभाग पर श्वेत के बिंदु चमकने लगे। आसन के समीप से उठकर हाथ पीठ पर बांध हुआ गवाक्ष के पास गया और दूर क्षितिज की ओर देखने लगा। उससे कुछ कहने के लिए मैं उठा, परंतु वही पीछे उड़ा। उसकी आंखों को सिकुड़ते हुए इसने एक असंबद्ध प्रश्न पूछा, कर्ण तुम्हारा और जरासंध का कभी द्वंद्व युद्ध हुआ था क्या? हाँ, मैंने उत्तर दिया। क्षण भर पहले पासों से भाग काटे निर्णय करने वाला दूसरे ही क्षण द्वंद्व युद्ध की बात क्यों पूछ रहा था, मेरी समझ में नहीं आया। उसके साथ रहकर मैं यह जान गया था कि ऐसे असंबद्ध प्रश्न तो वह प्रायः पूछ लेता। उस द्वंद्व युद्ध में तुमने जरासंध को जीवन दान दिया था क्या? अपने बाहुकंटक से मुक्त किया था क्या? हाँ। कलिंगों के राज्य में महारानी भानुमती के स्वयंवर में हम लोग गए थे, उस समय तुमने वधु का हरण कर लिया था। बाद में क्या हुआ इसका तुम्हें पता ही नहीं चला। क्रुद्ध होकर जरासंध द्वंद्व युद्ध के लिए मुझ पर टूट पड़ा और जब द्वंद्व में मेरे बाहुकंटक ने उसके प्राण संकट में डाल दिए तब उसने मुझे जीवन दान की याचना की, इसीलिए मैं उसको जीवित छोड़ दिया था। कारण यदि आज मैं भी तुमसे कुछ मांगूं तो वह मुझको देने में संकोच तो नहीं करोगे? उसने आंखें और अधिक सिकोड़ते हुए मुझसे कहा। युद्ध खेलने के अतिरिक्त और चाहे जो मांगो, मेरा जीवन सर्वस्व तुम्हारा ही है। युद्ध खेलने खेलना ही मत, मैं यही मांगना चाहता हूँ। इतना ही नहीं बल्कि यज्ञ के जिस समय राजसभा में युद्ध हो रहा उस समय तुम वहाँ उपस्थित ही मत रहना, यदि रहो भी तो जब तक युद्ध चले तब तक तुम कुछ भी मत बोलना, बस इतना है। यदि तुम्हें यदि संतोष होता हो तो जब तक तुम्हारा युद्ध चलेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं जाने के लिए उठा, इतने में भीतर से दुशासन अंदर आया। हमारे सामने आसन पर पड़ी हुई कौड़ियाँ उसने आते ही ऐसे उठा ली मानो स्वर्ण मुद्राएं हों। उसने दुर्योधन के हाथ में देता हुआ वह बोला, यह बहुमूल्य कौड़ियाँ इस तरह किसने डाल दी है? तुम लोग मुझसे फिर मगधों के राज्य का चक्कर लगवाना चाहते हो क्या? ओ तो दुशासन इन कौड़ियों को लेने ही मगध गया था। इतनी दूर जाकर ये कौड़ियाँ लाई गई थी, ऐसी क्या विशेषता थी इनमें? यह बात शायद वे दोनों ही जानते होंगे, उसको जानने की कोई विशेष लालसा मुझे नहीं थी। 10. दुर्योधन के यज्ञ के विचार में अनुचित बात कोई भी नहीं थी। धार्मिक कृत्य का समर्थन कौन नहीं करेगा, परंतु यज्ञवेत्ता के रूप में शकुनी मामा का नाम मुझको बिल्कुल ही नहीं भाया। मैंने तो इसके लिए श्रीकृष्ण को आमंत्रित करने का विचार किया था। गुरुदेव विदुर को यदि द्वारका भेजा जाता तो शायद श्रीकृष्ण बिना किसी ननुनच के वेत्ता पद स्वीकार कर लेते। मामा को वेत्ता पद देकर दुर्योधन ने कुरुओं की राजनौका का पतवार मानो मामा जी के हाथ में सौंप दी है। अब वे निश्चय करेंगे वही कुरुओं की दिशा होगी। मेरी जीवन तो उस नौका केवल एक मस्तूल मात्र रह गया था बीच में खड़ा, परंतु फिर भी अपना कोई निजी स्थान न रखने वाला, परिस्थिति के झोंके के साथ हिलने वाला, नकार सूचक सिर हिलाता हुआ नौका के साथ ही चलने वाला। मैं दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता था, परंतु उसके प्रत्येक विचार का समर्थन भी तो नहीं कर सकता था। पांडवों के बढ़ते हुए प्रताप से दुर्योधन केवल चिंतित ही नहीं, मन ही मन भयभीत भी हो गया था। अनेक बार राजसभा आमंत्रित कर महाराज धृतराष्ट्र के सामने उसने केवल एक ही प्रश्न पर विचार विमर्श किया था, और वह प्रश्न यही था कि पांडवों के बढ़ते हुए सामर्थ्य को कैसे रोका जाए। विचार का यह सूत्र ग्रहण कर चलते फिरते वह कभी कभी उनके विनाश का हास्यास्पद पर स्वप्न देखने लगा। एक बार राजसभा में उसने द्रौपदी को वश में करने के लिए एक विचार रखा। तब तो उसके राजनीतिक नेतृत्व पर मुझको सचमुच ही बड़ा तरस आया। उसकी सम्मति थी कि पांच पतियों वाले द्रौपदी के मन में पांचों के प्रति परस्पर विरोधी मतभेद पैदा कराने चाहिए। इसके लिए एक कुशल दास इंद्रप्रस्थ भेजी जाए, उसकी कुटिल कार्यवाही से ये पांचों व्यक्ति द्रौपदी के लिए आपस में लड़ झगड़ कर मर जाए। अंत में मुझको उससे कहना पड़ा कि रूखा सूखा खाने वाले भिक्षुओं के साथ जो स्त्री निष्ठा से गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकती है वह वैभव संपन्न राजाओं से कैसे छलना करेगी। शकुनी मामा तो अचिंतनीय कपटी कल्पनाएं राजनीति के सुंदर नाम पर उसको सुझाने लगे। राजसभा का उपसंहार करते हुए महाराज धृतराष्ट्र ने मुझसे पूछा, क्यों कर्ण पांडवों के संबंध में तुम्हारे क्या विचार है? सभा के अनेक लोगों की आशा थी कि मैं भी मामा की तरह बुद्धि का व्यायाम करने वाली कोई आश्चर्यजनक योजना बताकर सबको चकित कर दूंगा, लेकिन वे शायद कर्ण को अच्छी तरह जान नहीं पाए थे। कुटिल षड्यंत्रों की कपटी राजनीति कर्ण के स्वभाव में थी ही नहीं, यह बात सभा के कुछ योद्धा जान नहीं सके थे। इसका मुझको सचमुच ही दुख हुआ। पांडवों का प्रश्न सदा के लिए ही हल हो जाए, इस विचार से मैंने सभा में कहा। पांडवों से शत्रुता बढ़ाकर कुरुओं का कल्याण नहीं होगा। पितामह जी के इस विचार से मैं पूर्ण सहमत हूँ। शत्रुता जीवन का ध्येय हो ही नहीं सकती, परंतु यदि सब लोग यह समझ रहे हैं कि पांडवों के बढ़ते सामर्थ्य से कुरुओं को खतरा है, तो विराट राज द्रुपद की सेना पहुंचने से पूर्व पांडवों को युद्ध का बीड़ा भेजकर उनसे प्रकट युद्ध घोषित कर दिया जाए। समरभूमि निर्णय कर देगी कि जीने का अधिकार किसको है। परंतु सभा के एक भी योद्धा ने मेरे विचार का समर्थन नहीं किया। सच पूछो तो अकेले पितामह को छोड़कर कुरुओं के सभी योद्धा पांडवों से अत्यधिक भयभीत थे। उनके बौने पराक्रम से घृणित षड्यंत्र उत्पन्न हो रहे थे। उनको सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता। कभी कभी मैं सभा अधूरी ही छोड़कर लौट आता और शोण को साथ देकर दूर गंगा के तट पर जाकर चुपचाप बैठ जाता। गंगा के पात्र में मछली पकड़ने के लिए अविचल खड़े हुए श्वेत बक पक्षियों को देखकर मेरे मन में भी यही आता कि कुरुओं की सभा भी बक पक्षियों से ही भरी हुई है। उस सभा में अपवाद स्वरूप भीष्म को छोड़कर एक भी गरुड़ पक्षी नहीं था। यह प्रतीति मुझको व्याकुल कर देती थी। मेरे आसपास जो घटित हो रहा था वह मुझको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। मुझको अच्छा नहीं लगा। कुरुओं की राजसभा में ऐसा था ही कौन जिससे मैं अपने मन की बात करता। एक दुर्योधन को छोड़कर अन्य सभी लोग मेरी और मेरे सच्चे मन से अंगराज के रूप में देखते थे क्या? दुर्योधन के प्रति मेरे मन में आदर था, परंतु फिर भी अनेक बार मुझको उसकी योजनाएं और विचार बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते थे। मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही था कि हस्तिनापुर के सभी लोग यह निश्चित कर समझ बैठे थे कि दुर्योधन जो कुछ करता है वह कर्ण के परामर्श से करता है। किसी ने भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कर्ण साधारण स्थिति से निकाल कर आया हुआ है। अन्याय किसी प्रकार सह्य होते हैं, यह उसने स्वयं सिर झुकाकर अनुभव किया था। जो अन्याय का अनुभव कर चुकता है वह कभी भी किसी पर अन्याय का अस्त्र नहीं उठाता। इसीलिए दुर्योधन और मामा जी के विचारों से मैं कभी सहमत नहीं हो सका था। लेकिन साथ ही साथ यह भी सत्य था कि मैं अपने विचार उनको समझा नहीं सका था। वास्तव में मेरे कथन में समझ में न आने योग्य उलझन भरी हुई कोई बात ही थी नहीं, सीधी साधी बात स्पष्ट युद्ध। वीरों को शोभा देने वाला, कीर्ति प्रदान करने वाला, परंतु उसे सुनकर उस पर विचार कर सके दुर्योधन का मन इतना अस्वस्थ नहीं था। शरीर के निकट रहने वाले व्यक्ति के मन में मन के भी निकट हो यह निश्चित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न विचारों का, कल्पनाओं का और भावनाओं का अत्यंत रहस्यमय इकाई होता है। परिदृष्टि से तो मेरा एक ही कर्तव्य था, यथाशक्ति उसके यज्ञ में सहायता करना। इच्छा हो या न हो, कर्तव्य का पालन तो करना ही पड़ता है। एक ही कुश कुल में यही यज्ञ दो बार नहीं किया जा सकता, इसलिए उस सबने हमारे यज्ञ को महायज्ञ नाम दिया था।